This is Vivek Kumar Hind, BA Part 2, Faculty of Social Sciences. Now, this is BA Part 1, English Honors, Paper 1st, Novel, Lord of the Flies by William Golding. Lord of the Flies, William Golding के द्वारा इसका सविस्तार हिंदी सारांश. अध्याय 1, शंख की आवाज. राल्फ लताओं में से होता हुआ कच्छ या लैगून की तरफ जा रहा था. उसके बाल उजल थे और वह 12 वर्ष से कुछ अधिक आयु का था. कुछ ही समय पश्चात एक नाटा मोटा लड़का पिग्गी उसे आ मिला, जो चश्मा लगाए था. दरअसल एक वायुयान जंगल में गिर पड़ा था और स्कूली बच्चे उसमें से सुरक्षित निकलकर बलुई समुद्र तट की तरफ जा रहे थे. राल्फ और पिग्गी भी उस वायुयान दुर्घटना के शिकार हुए थे. उनके पीछे जंगल में एक लंबा धब्बा था जहां वायुयान गिरा था. राल्फ ने पिग्गी को बताया कि वे एक द्वीप पर हैं और आसपास में कोई व्यस्क नहीं है. मोटा लड़का पिग्गी कुछ क्षण के लिए चौंका, किंतु शीघ्र ही उसने होश संभाल लिया. उन्होंने वायु में आक्रमण के बारे में बातचीत की, जिसमें वायुयान के बालकों के अतिरिक्त सभी चालक मारे गए थे. बालक जीवित बच गए थे और सारे जंगल में बिखर गए थे. पिग्गी व्यस्कों से रहित जीवन की संभावना से भयभीत था, किंतु राल्फ यह सोचकर हर्षित था कि उसकी महत्वाकांक्षा पूर्ण हुई. वे आगे बढ़ते हुए बातें करते रहे. पिग्गी को आशा थी कि वहां कुछ और बालक मिलेंगे. वह लंबे और हष्ट पुष्ट राल्फ के कदम से मिलाकर नहीं चल सका और उसे अपनी चाल तेज करनी पड़ी. परिणाम यह हुआ कि उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी और यह स्पष्ट हो गया कि वह दमे का रोगी है. पिग्गी ने अपने गंदे स्वेटर से चश्मा पोंछा, उसे ठीक तरह लगाया और राल्फ के पीछे पीछे चला. कुछ ही सेकेंडों में वे जंगल से बाहर आ गए. समुद्र तट ताड़ के वृक्षों से भरपूर था. जमीन मोटी घास और नारियल तथा ताड़ की पत्तियों से पटी हुई थी. राल्फ ने सामने के क्षेत्र का निरीक्षण किया. उसे सुदूर स्थित मूंगे की चट्टान पर सफेद लहरें दिखाई पड़ी. शीघ्र ही वे बलुई तट पर पहुंच गए, जहां उन्हें रेत में ठंडे पानी का एक कुंड मिला. अपने कपड़े उतारकर वे उसमें तैरने के लिए कूद पड़े. उन्हें कटिबंधीय गर्मी और पसीने से राहत मिली. राल्फ ने अपने मित्र से कहा कि उसका पिता नौसेना में कमांडर है और वह अवश्य ही उनका उद्धार करने आएगा. लेकिन पिग्गी ने यह कहकर उसका विश्वास चकनाचूर कर दिया कि आणविक आक्रमण में उनके वायुयान के साथ साथ हवाई अड्डे में उपस्थित लोग भी मारे गए थे. इस बात की संभावना अत्यंत क्षीण थी कि उसके पिता को उनके वायुयान के गिरने के स्थान का पता हो. उसने व्याकुल होकर कहा, शायद हमें मरते दम तक यहीं रहना पड़े. अब उनकी स्थिति की भयंकरता राल्फ की समझ में आई. समुद्र तट पर ताड़ के वृक्षों की कतार थी और समुद्र में लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक मूंगे की चट्टान पर लहरें टकराई रही थी. राल्फ ने अपनी तैरने की शक्ति का प्रदर्शन करके अपने साथी की प्रशंसा की. उन्हें कच्छ में चमकता हुआ एक बड़ा शंख मिला. गहरे क्रीम रंग का वह सुंदर शंख 18 इंच या 45 सेंटीमीटर लंबा था. पिग्गी ने तुरंत समझ लिया कि उस शंख का द्वीप पर इधर उधर बिखरे हुए बालकों को बुलाने के लिए तुरही के रूप में प्रयोग किया जा सकता है. राल्फ ने उसमें फूंक भरकर बजाने की कोशिश की. कुछ कोशिशों के बाद वह उसमें से तुरही के समान तेज आवाज निकालने में सफल हो गया. आवाज सुनकर बच्चे इकट्ठे होने लगे. सबसे पहले 6 वर्षीय जॉनी आया. कुछ ही देर में लड़कों का एक दल वहां आ पहुंचा. वे काले लबादे और काली टोपी पहने हुए थे और चांदी के बैज लगाए हुए थे. वे स्कूल में भजन गाने वाले बालक थे और जैक मैरिड्रियू उनका नेता था. पिग्गी ने उन लड़कों का परिचय कराया और उनसे कहा कि हम मीटिंग कर रहे हैं. लड़कों में 2 जुड़वा थे, सैम और एरिक, जो सूरत और चाल ढाल में समान थे. उनका परिचय कराते समय पिग्गी गड़बड़ा गया और सब जी भरकर हंसे. जैक ने राल्फ से तुराही के बारे में पूछा, क्योंकि उसका ख्याल था कि वह आवाज़ किसी जहाज से आ रही थी. राल्फ ने जैक से कहा कि न तो कोई तुरही थी और न जहाज, आवाज शंख से हुई थी. जैक भी अपनी भजन मंडली के साथ मीटिंग के लिए रुक गया. वहाँ कोई व्यस्क न होने के कारण लड़कों ने तय किया कि वे अपनी चिंता आप ही करेंगे. उन्होंने प्रस्ताव किया कि उनमें से एक ही नेता चुन लिया जाए. जैक ने नेता पद के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया, क्योंकि वह भजन मंडली का नेता भी था. लेकिन राल्फ ने सुझाव दिया कि नेता के लिए मतदान कर लिया जाए जैसा वे स्कूल में करते थे। यह सुझाव लड़कों को बेहद पसंद आया और वे बड़े जोश के साथ चिल्ला उठे, नेता के लिए वोट दो। शोरगुल के बीच राल्फ के लिए आवाज उठने लगी। हालांकि अब तक पिग्गी ने ही बुद्धिमानी दिखाई थी और स्पष्ट रूप से जैक ही नेता था, फिर भी राल्फ में शांतता थी जिससे वह अलग ही पहचाना जाता था। उसका डील डॉल और शक्ल सूरत भी विशिष्ट थी और सबसे बलवान विशेषता थी उसका शंख, और लड़के शंख वाले को अपने नेता बनाना चाहते थे। भजन मंडली के लड़कों के अतिरिक्त और सभी लड़कों ने राल्फ के लिए वोट दिया और राल्फ ने स्वयं को बालकों के उस दल का नेता घोषित कर दिया। जैक को सांत्वना और प्रसन्नता प्रदान करने के लिए राल्फ ने उसे अपना नायब और सेना या शिकारियों का मुखिया बना दिया। भजन मंडली के लड़कों ने अपने काले लबादे उतारकर कुछ समय विश्राम किया, जबकि राल्फ और जैक ने निश्चय किया कि उस स्थान का सर्वेक्षण करके मालूम करें कि वह वास्तव में द्वीप है या नहीं। जैक, साइमन और राल्फ स्नान कुंड के पास होकर रेत पर चल पड़े। पिग्गी ने उनके साथ चलना चाहा, लेकिन राल्फ ने उसे कहा कि वहीं ठहर कर लड़कों की सूची तैयार करे। वह जानता था कि दमे का रोगी पिग्गी उतने परिश्रम को सह नहीं सकेगा, लेकिन पिग्गी को निराशा हुई और वह बुदबुदाया, जब उसे शंख मिला तब मैं उसके साथ था, मैं अन्य सभी से पहले उसके साथ था। तीसरे पहर की समाप्ति से पूर्व वे द्वीप के छोर पर पहुंच गए। जिस रेतीले तट पर वे खड़े थे वह पर्वत के अधिक निकट था और उन्होंने वहीं से पर्वत पर चढ़ने का निर्णय लिया। लताओं और जड़ों के जाल के बावजूद लड़के ऊपर चढ़ते गए। उन्होंने महसूस किया कि वे अन्वेषकों के समान हैं और उनमें भरपूर जोश था। रास्ते में उन्हें एक चट्टान मिली, जब जैक उस पर झुका तो वह हिलने लगी। उन्होंने तय किया कि वह उस चट्टान को ढलान से नीचे धकेल दिया जाए। कुछ असफल प्रयासों के पश्चात वे उसे नीचे धकेलने में सफल हो गए। ऐसा करके उन्हें उपलब्धि की अनुभूति हुई, इससे वे और तेजी से ऊपर चढ़ने में समर्थ हुए और अल्प समय में ही वे शिखर पर पहुंच गए। पर्वत शिखर से उन्हें जल का वृत्ताकार क्षितिज दिखाई पड़ा और इस प्रकार वे आश्वस्त हो गए कि वे एक द्वीप पर हैं। वह द्वीप जहां पानी में समाप्त होता था और वहां एक और द्वीप था, वह किले के समान एक चट्टान थी। जैक ने कहा, वह मूंगे की चट्टान है, मैंने इस जैसे चित्र देखे हैं। चट्टान तट के समानांतर 1 मील 1.6 किलोमीटर तक थी। जैक ने शिखर से उस जगह की तरफ इंगित किया जहां उनका वायुयान गिरा था। वह चबूतरे जैसा स्थान कच्छ के भीतर तक गया था और उसके पास कीड़े मकोड़े जैसी आकृतियां चल फिर रही थी। राल्फ ने वापस जाने के लिए रास्ते की पहचान समझी और दोनों लड़कों को समझाई। उसने यह भी कहा कि वहां न तो गांव है न नावें। जैक जोश में आकर बोल उठा, हमें भोजन मिलेगा, खोज करो, शिकार पकड़ो जब तक हमें लेने नहीं आ जाते। पर्वत की दूसरी तरफ ज्यादा ढलान था और चट्टान नहीं थी। जब साइमन ने अपनी भूख का जिक्र किया तो दूसरों को भी अपनी भूख का आभास हुआ। राल्फ ने उन्हें झिड़का और सब नीचे उतरने लगे। वे चट्टानी ढलान से उतरे और उन्हें कैंडल झाड़ियों जैसी झाड़ियां मिली जो गहरे रंग की सदाबहार और खुशबूदार थी। जैक ने अपने चाकू से एक को काटा तो खुशबू उन पर फैल गई। राल्फ बोला, ये कैंडल कलियां हैं। वे थके थके चले जा रहे थे तभी उन्होंने हल्की सी चीखें और जमीन पर खुर पटकने की आवाजें सुनी। उन्होंने देखा कि एक सुअर का बच्चा लताओं के जाल में फंसा हुआ है और भय से पागल सा छटपटा रहा है। तीनों लड़के आगे बढ़े और जैक ने फुर्ती से अपना चाकू निकाल लिया। उसने चाकू मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया लेकिन सुअर का बच्चा चीखता ही रहा। तब वह लताओं से छूटकर भाग गया। जैक असमंजस में पड़ गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चाकू को म्यान में डाल लिया। तब वे सब हंस पड़े, अपनी राह पर बढ़ने लगे। जैक ने बहाना बनाया कि वह तय कर रहा था कि उसे कहाँ चाकू मारूं, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि उसने चाकू क्यों नहीं मारा, क्योंकि चाकू जिंदा मांस को काटता, क्योंकि खून का बहना बर्दाश्त नहीं होता। तब जैक ने म्यान से चाकू निकाला और एक पेड़ के तने में भोंक दिया, यह व्यक्त करते हुए कि अगली बार कोई रहम नहीं किया जाएगा। लेकिन जैक ने जब लड़कों का नेतृत्व संभाला तब हालात बदल गए। अब हम बात करेंगे अध्याय नंबर 2 का समरी।
सुजीत कुमार, बीए थर्ड ईयर, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। लॉर्ड ऑफ द फाइल्स, जो कि विलियम गॉल्डिंग द्वारा लिखा गया है, उसका समरी किया जा रहा है। अध्याय 2, पर्वत पर आग। जब तीनों लौट आए तो रॉल्फ ने प्लेटफॉर्म पर दूसरी मीटिंग की। दोपहर बीत चुकी थी और सूर्य पश्चिम की ओर आ रहा था। लड़कों ने कपड़े पहन लिए थे, उनमें से कोई को धूप की तेजी के कारण पीड़ा होने लगी थी। भजन मंडली के लड़कों ने अपने लबादे उतार दिए थे। रॉल्फ ने शंख उठाया, लेकिन वह यह तय नहीं कर सका कि खड़ा हो जाए अथवा बैठ रहे। आखिरकार उसने अपना गला साफ करके लड़कों को बताया कि वे एक निर्जन द्वीप पर हैं और क्योंकि वहां कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है, इसलिए उन्हें तब तक स्वयं ही अपनी देखभाल करनी होगी जब तक उनका वहां से उद्धार नहीं हो जाए। यह तय किया गया कि जो भी बोलना चाहे वह पहले अपने हाथ उठाएगा, जैसा कि स्कूल में होता था। तब उसे शंख दे दिया जाएगा और तभी उसे मीटिंग में बोलने की अनुमति मिलेगी। सबसे पहले पिग्गी ने शंख मांगा। वह उनके उद्धार के बारे में हताशा था, क्योंकि वह हवाई जहाज कहाँ गिरा था यह कोई नहीं जानता था। उसी वक्त पीछे की तरफ हलचल हुई। कुछ छोटे लड़के एक 6 वर्षीय बालक को आगे धकेल रहे थे। उसके चेहरे पर एक भद्दा लाल दाग था। वह कुछ कहना चाहता था और उसने शंख के लिए अपना हाथ फैलाया। उस बच्चे की हरकत से सब ठहाका मारकर हंस पड़े। रॉल्फ ने उसे अपना शंख दे दिया, किंतु वह इतना कांप रहा था कि एक शब्द भी नहीं बोल सका। रॉल्फ ने पिग्गी उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया और उसकी बात सबको सुनाई। छोटे बच्चे ने हिचकिचाते हुए कहा कि झाड़ियों में एक बड़ी सांप जैसी चीज छुपी हुई है। रॉल्फ ने उन्हें विश्वास दिलाना चाहा कि कोई ऐसी चीज है ही नहीं, लेकिन कुछ छोटे बच्चों को विश्वास नहीं हुआ। रॉल्फ ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सांप सिर्फ अफ्रीका और भारत जैसे बड़े देशों में ही पाए जाते हैं, उस जैसे द्वीप पर नहीं। रॉल्फ ने नक्शों से भरे कमरे के बारे में कहकर लड़कों का मनोबल बढ़ाया। उसने कहा कि उन नक्शों में सारे द्वीपों के चित्र हैं और उसके पिता जो नौसेना में हैं उन नक्शों और चित्रों की सहायता से देर सवेर उन्हें यहाँ से निकाल ले जाएंगे। रॉल्फ के शब्दों से सबको सुरक्षा का अनुभव हुआ और सभी ने तालियां बजाई। अब रॉल्फ ने उनसे कहा कि शायद किसी को भी हवाई अड्डों के लोगों को भी मालूम नहीं है कि वे कहाँ हैं, इसलिए उन्हें वहाँ दीर्घकाल तक रहना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि वे अपनी मुक्ति के बारे में सोचें। इसके लिए उन्हें वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को अपनी मौजूदगी बतानी होगी। पर्वत के शिखर पर आग जलाकर ही ऐसा किया जा सकता है। जैसे ही उसने यह कहा, वैसे ही लड़के जैक के नेतृत्व में पहाड़ी की ओर आग जलाओ चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। सब जा चुके थे, केवल रॉल्फ और पिग्गी रह गए थे। पिग्गी को भावुकता का यह तमाशा पसंद नहीं आया। वह घृणा से बोला, छोटे बच्चों की भीड़ की तरह। लेकिन रॉल्फ भी ऊपर की ओर जा रहा था और पिग्गी भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। पिग्गी के अतिरिक्त और सभी आग जलाने के लिए लट्ठे या लकड़ी के टुकड़े चुनने में जुट गए। लड़कों की प्रत्येक पार्टी थोड़ा या बहुत लकड़ी ले आई और ढेर लग गया। जुड़वां सैम और एरिक सूखी पत्तियों बाहों में भरकर ऊपर आए और उन्हें ढेर पर डाल दिया। जब सब ने देखा कि पूरे ढेर पूरा हो गया तो और लकड़ियां लाना बंद कर दिया। अब आग जलाने की समस्या उत्पन्न हुई। उन्हें ख्याल आया कि उनके पास माचिस नहीं थी, आग कैसे जलाई जाती। तभी पिग्गी वहां पर आया। जैक ने सुझाव दिया कि पिग्गी के चश्मे से आग लगाई जा सकती थी। पिग्गी पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पहले ही जैक ने उसका चश्मा छीन लिया। रॉल्फ ने चश्मे के लेसों को ढलते हुए सूर्य की ओर करके आगे पीछे किया और सड़ी हुई लकड़ी के एक टुकड़े पर सूर्य का प्रतिबिंब डाला। तुरंत धुएं की लकीर उठती दिखाई पड़ी और धीरे धीरे आग जल उठी। लड़के खुशी से झूम उठे, लेकिन उस समय को लकड़ी के लट्ठों से दिन रात जीवित रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने तय किया कि छोटे छोटे टुकड़ों से उसे कायम रखा जाए। रॉल्फ ने सुझाव दिया कि कोई आग को जलाए रखने की जिम्मेदारी ले। जैक ने अपने शिकारियों को इसके लिए प्रस्तुत किया। उसने उन्हें आदेश दिया कि आग जलती रखने के लिए वे बारी बारी से तैनात रहे। अब पिग्गी ने उनकी मूर्खता पर भाषण देना शुरू किया। दरअसल आग नीचे जंगल की तरफ बढ़ने लगी थी और लड़के खुश होकर उछल रहे थे, लेकिन अकेले पिग्गी ने ही उस अग्निकांड के परिणाम को समझा। उसने उन्हें बताया कि उनकी बहुमूल्य जलाऊ लकड़ी और फलदार वृक्षों को जला रही है। उसने कहा कि पहले किए जाने वाला काम को पहले नष्ट करने के बजाय वे उस लकड़ी को प्रयोग नीचे तट पर अपने लिए झोपड़ियां बनाने में कर सकते थे, उस परिस्थिति में उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता आश्रय की थी, न कि अग्नि संकेत की। लेकिन लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। पिग्गी ने उनसे यह भी कहा कि अपने उन्हीं संख्या की भी निश्चित रूप से जानकारी नहीं है, क्योंकि उनकी सूचना बनाने का समय ही उसे नहीं मिल पाया। वे सब जंगल में जाकर बिखर गए थे। इसका उसका कार्य और भी कठिन हो गया था। स्थिति की गंभीरता उनकी समझ में तब आई जब पिग्गी ने उन्हें बताया कि चेहरे का दाग वाला बच्चा गुम है। सारे लड़के जो पिग्गी का मखौल बना रहे थे एकाएक खामोश हो गए। वे बेहद डर गए और एक दूसरे को भय तथा आत्मविश्वास अविश्वास सहित देखने लगे। एक मौन आतंक उनमें व्याप्त हो गया। सूर्य क्षितिज के निकट पहुंच चुका था। पर्वत पर जलती आग की आवाज बराबर जारी रही। अध्याय 3, बलुई तट पर झपड़ियां। इस अध्याय में हम दोनों नेताओं की हताशा देखते हैं। जैक तलझाड़ी में झुककर सुअर के चिन्ह ढूंढ रहा था। उसके हाथ में लगभग 5 फुट 1.5 मीटर लंबी नुकीली छड़ी थी। जंगल में पूर्ण शांति थी। जैक सुअर का पता लगाने में अपनी असफलता से निराश था। उसे फिर एक गंध मालूम हुई और सुअर की ताजा विष्ठा मिली। वह आगे बढ़ा लेकिन मांस की खोज का कोई परिणाम नहीं निकला। पसीने में लथपथ जैक कच्छ की तरफ बढ़ा। वहां उसने रॉल्फ और साइमन को झोपड़ियां बनाते पाया। रॉल्फ को उसके आने का पता उस समय चला जब उसने पानी मांगा। साइमन ने पत्तियों से भरी डाल उठाने की कोशिश की, किंतु ज्यों ही उसने उसे झोपड़ी पर रखा त्यों ही पत्तियां बिखर गईं। रॉल्फ ने जैक से शिकायत की कि छोटे लड़के कार्य के लिए उपयोगी नहीं थे और बड़े लड़कों की कार्य में रुचि शीघ्र ही समाप्त हो गई और वे तैरने चले गए। रॉल्फ को यह भी शिकायत थी कि कोई भी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता। उनके निर्णयों का कभी पालन नहीं होता। उनकी बैठकों में कोरी बातें होती थीं। यहाँ तक कि शिकारी भी कभी कभी ही मदद करते थे। इस सारे पर जैक गुस्से से भरकर रॉल्फ पर बरस गई पड़ा। क्या तुम आरोप लगा रहे हो? दोनों क्रुद्ध से लाल हो उठे और उनकी त्योरियां चढ़ गईं। वे खुले विरोध की सीमा तक पहुंच चुके थे। उनकी मान्यताएं भिन्न थीं। रॉल्फ आश्रय स्थलों और आग को महत्व देता था, जबकि जैक की रुचि केवल शिकार में थी। लेकिन जब साइमन ने छोटे लड़कों में भरे भय का उल्लेख किया, तब कहीं वे दोनों शांत हुए। साइमन ने बताया कि बच्चों में किसी जानवर का डर समा गया है। जैक ने भी स्वीकार किया कि कभी कभी उसे भी डर लगता था। जब वह जंगल में अकेला होता था तब उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। रॉल्फ ने सुझाव दिया कि उनके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि उनका उद्धार हो जाए। तब उसने कहा कि अज्ञान के भय के कारण ही उन्हें आश्रयों और अग्नि संकेत की आवश्यकता है। किंतु जैक का उत्तर था, तुम और तुम्हारी आग, वह तो सिर्फ सुअरों के बारे में ही सोचता था, और यह कि तीसरे पहर की गर्मी में वे कहाँ आराम कर रहे होंगे। यकाएक उसे एक ख्याल आया और वह चिल्ला उठा, पा लिया। राल्फ को इस पर कुछ अचरज सा हुआ। उसने सोचा कि जैक का ख्याल लड़कों के बारे में था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि जैक फिर सुअर को पकड़ने के नए तरीके के बारे में सोच रहा था, तो वह गुस्से में भरकर बोल उठा, तुम तो सिर्फ सुअर 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 के ही बारे में कह सकते हो। विरोध ने सिर्फ फिर सर उठा लिया था, लेकिन वे जल्द ही शांत हो गया। रॉल्फ ने समझाया कि लोगों के बारे में जैसा सोचा जाता है, ठीक वैसे ही वे कभी नहीं होते। झोपड़ियां तैयार करने में उसकी सहायता के लिए साइमन के अतिरिक्त और कोई नहीं था। जैक नहाने जाने से पहले उनकी मदद करने को तैयार हो गया। दोनों झोपड़ियों की तरफ बढ़े, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि साइमन गायब था। जैक बोला, वह भी ऊपर उबकर नहाने चला गया है। लेकिन साइमन स्नान कुंड में नहीं था। वह जैक और रॉल्फ के पीछे पीछे कुछ दूर चलने के बाद रुक गया था। एक उद्देश्य के साथ वह जंगल में चला गया। वहां कुछ छोटे छोटे बच्चों को फल तोड़ने में सहायता करने के बाद वह अकेला तलझारी की तरफ बढ़ गया। वहां उसने एक खुली जगह में प्रवेश किया जिसका पता सिर्फ उसी को था। वह उसके बीच में पहुंच गया और द्वीप की आवाज़ें सुनने लगा। वे आवाज़ें अद्भुत चमकीले पक्षियों की थीं, मधुपंखियों की थीं और लहरों के मंद छपाकों की थीं। संध्या बीतने लगी थी। प्रकाशमंद पड़ने लगा था, इसलिए भड़कीले रंग फीके पड़ गए और गर्मी तथा उतावलापन शांत हो गया। वातावरण अधिक ठंडा हो गया और चारों तरफ सायंकाल का अंधकार छा गया। अध्याय 4, पुते हुए चेहरे और लंबे बाल। यहाँ लेखक हमें उन छोटे बालकों के जीवन के बारे में बताता है जिनकी आयु 6 वर्ष के आसपास थी। वे लिटिल बंस छुटके कहलाते थे। उन्होंने अपना ही संगठित जीवन बना लिया था। वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक की धीमी दिनचर्या के अभ्यस्त हो चुके थे। उन्हें प्रातःकाल का चमकता सूरज और मीठी गंधा वाला पवन सुहाता था। प्रातः के पक्के रंग मध्यान्ह होते होते मोती जैसी आभा में परिवर्तित हो जाते थे और गर्मी प्रहार करने वाली हो जाती थी। अपराहन बीतने पर मृग मरीचिकाएँ लुप्त हो जाती थीं और क्षितिज एकसार और नीला हो जाता था। सूर्यास्त होने पर अंधकार द्वीप को ढक लेता था और कुछ ही समय में झोपड़ियाँ बेचैनी से भर उठती थीं। धूप के कारण उनका रंग भूरा हो गया था। वे गंदे और मैले कुचैले थे। कच्चे और अधिक पके फल खाने से उन्हें अतिसार हो गया था। वे बलुई तट पर निरुद्देश तथा अत्यंत साधारण खेल खेलकर और बड़े लड़कों की मीटिंगों में उपस्थित होकर मनोरंजन करके अपना समय व्यतीत करते थे। वे अपने ही तरीके से सुखी थे। इस विशेष दिन उनमें से 3, हेनरी, जॉनी और परसिवल, रेत पर खेल रहे थे। हेनरी उस गुम हुए बालक का रिश्तेदार था जिसके चेहरे पर लाल दाग था, लेकिन उसे अपने खोए हुए रिश्तेदार का कोई ख्याल नहीं था। रोजर और मोरिस की ड्यूटी आग पर थी। अब जब उन्हें छुट्टी मिली तो वे तैरने के लिए चल पड़े और लड़कों द्वारा बनाए गए किलों के बीच होकर गए। परसिवल विरोध करने लगा तो रोजर भाग निकला। उन्होंने खेल बंद कर दिया और हेनरी जाकर कुंड के किनारे बैठ गया। रोजर उसके पीछे पीछे चला और एक ताड़ वृक्ष के पीछे छुपकर हेनरी पर पानी के छींटे डालने के लिए कुंड में पत्थर फेंकने लगा, किंतु उसे हेनरी पर पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं पड़ी। पानी में पत्थर गिरने की आवाज़ से हेनरी को अचरज हुआ। उसने चारों तरफ देखा कि पत्थर कौन फेंक रहा है, लेकिन रोजर ताड़ वृक्ष के पीछे छुप गया। कुछ ही समय बाद किसी ने रोजर को पुकारा। वह जैक था जो लगभग 10 गज दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। सैम, एरिक और बिल भी नदी के छोर पर बने कुंड के किनारे प्रतीक्षा कर रहे थे। जैक के हाथों में 2 बड़े पत्ते थे, एक पर सफ़ेद मिट्टी थी और दूसरे पर लाल। कोयले का एक लंबा टुकड़ा भी था। वह अपने चेहरे पर मिट्टी पोतकर अपने आप को पेंट करने लगा। ऐसा करते समय उसने रोजर को समझाया कि सुअरों तक पहुंचने के लिए एकमात्र उपाय स्वयं को रंगों से पोतना है। उसे थोड़े हरे रंग की जरूरत थी ताकि अपना छद्म आवरण पूरा कर सके। जैक ने अपना एक गाल और आँख के चारों तरफ का भाग सफ़ेद कर रंग लिया, फिर अपने चेहरे के दूसरे भाग पर लाल रंग पोत लिया और दाएं कान से लेकर बाएं जबड़े तक कोयले से एक काली पट्टी बना ली। जैक ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने जुड़वा भाइयों को अपनी शिकार पार्टी में शामिल होने को विवश किया। उसे आग के पास ड्यूटी देनी थी, लेकिन मुखौटे ने उन्हें बाध्य कर दिया। जब शिकार पार्टी व्यस्त थी, तब रॉल्फ, पिग्गी और साइमन कच्छ के निकट निरुद्देश घूमकर वक्त बर्बाद कर रहे थे। पिग्गी ने सुझाव दिया कि रेत में छड़ी गाड़कर धूप घड़ी बना सकते हैं। रॉल्फ घूमकर मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान से पिग्गी को साहस प्राप्त हुआ। उसने कहा कि प्रत्येक लड़के के लिए एक धूप घड़ी बनाई जा सकती है, क्योंकि छड़ियाँ बहुत सारी हैं। इस पर रॉल्फ कुछ नाराज होकर बोला, चुप हो जाओ। वह खुद कुंड में तैरने चला गया। क्षितिज को ध्यान से देखने पर वह अकस्मात बड़े जोश में चिल्ला उठा कि दूर समुद्र में उसे एक जहाज की चिमनी का धुआं दिखाई दे रहा है। उसे पक्का विश्वास था कि वह जहाज था। वह उत्तेजित था, उसका उद्धार निकट था। उसे तुरंत अग्नि संकेत का ख्याल आया और वह पर्वत शिखर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ और लड़कों ने भी धुआं देखा था और वे रॉल्फ के पीछे दौड़ पड़े। अकेला पिग्गी ही इस हलचल का कारण नहीं समझ पाया, क्योंकि वह धुआं देखने में असमर्थ था, लेकिन वह भी दूसरों के पीछे धीरे धीरे चल पड़ा। रॉल्फ ने शिखर पर पहुंचकर देखा कि आग कई घंटों पहले बुझ चुकी थी। असहायता की उस स्थिति में वह क्रोध में आकर बकने लगा। उसने आग को फिर जलाने की कोशिश की किंतु असफल रहा। जहाज दूर और दूर चला जा रहा था। वह वहां खड़े खड़े निराशा में सिर्फ यही पुकार सका, लौट आओ लौट जाओ। आग पर जिनकी ड्यूटी थी वे ड्यूटी छोड़कर जय की शिकार पार्टी में शामिल होने चले गए थे। कुछ क्षण पश्चात शिकारियों का विजय जुलूस वहां आ पहुंचा। जय और उसके शिकारी शिकार करके गीत गाते लौट रहे थे। जुड़वां भाई अपने कंधे पर एक लंबी लकड़ी टिकाए था जिस पर एक सुअर की भारी लाश लटक रही थी। वे बड़े उत्तेजित होकर बातें करते आ रहे थे कि उन्होंने किस तरह सुअर का शिकार किया था। राल्फ अस्पष्टतः क्रोधित था और उसने गंभीरता से जैक से कहा, तुमने आग बुझाने नहीं बुझ जाने दी। जैक राल्फ का मूड समझ नहीं सका और उसके शब्दों को अप्रासंगिकता पर क्रुद्ध हुआ। उसने कहा कि शिकार को घेरा बनाने के लिए जुड़वा भी आवश्यक थे। फिर वह बोला कि आग लगभग एक घंटे पहले बुझ गई होगी और वह तो फिर जलाई जा सकती है। तब राल्फ ने उसे बताया कि किस तरह एक जहाज उधर होकर गुजरा था और उन्होंने अपने उद्धार का एक अवसर खो दिया। यह जैक की शिकार के लिए उत्सुकता के कारण ही हुआ। फिर जैक की समझ में यह नहीं आया कि राल्फ इतना बदहवास क्यों था। लेकिन जब पिग्गी ने तीखी आवाज में उसकी भर्त्सना की तो उसने झुंझलाकर मोटे के पेट में घूंसा मार दिया। पिग्गी के चश्मे का एक कांच टूट गया। इस दादागिरी के परिणाम स्वरूप जैक का तनाव दूर हो गया। उसने आग बुझा जाने देने के लिए और उद्धार का एक मौका गंवा देने के लिए क्षमा की प्रार्थना की। जैक के इस सद्भाव के कारण उसे उद्धार हृदय माना गया। जैक को सही और राल्फ को गलत ठहराया गया। जैक की उदार क्षमा याचना के कारण शिकारियों ने उसकी खुलकर सराहना की, लेकिन राल्फ को यह एक गंदी चालाकी लगी और उसने अपनी नेतागिरी का रौब जमाते हुए आग को फिर जलाने का हुक्म दिया। आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने से तनाव दूर हो गया और पिग्गी के चश्मे के बीच हुए लेंस की सहायता से आग फिर जला दी गई। आग पर सुअर भुना गया और सबने सुअर के गोश्त का शानदार भोजन किया। जैक ने पिग्गी को उसका हिस्सा नहीं दिया, लेकिन साइमन ने उसे अपने हिस्से में से दे दिया। लंबी चुप्पी छाई रही जिसे मॉरिस ने तोड़ा। उसने जैक से पूछा कि सुअर कहाँ मिला। जैक तो सारी कहानी सुनाने का बेहद उत्सुक था ही। उसने शिकार का पूरा विवरण सुना दिया। तब सब उत्तेजित होकर शिकार के बारे में बातें करने लगे और विजय गीत गाने लगे। सुअर को मार डालो, उसका गला काट डालो, मार मार कर कचूमर निकाल डालो। जब शोर खत्म हुआ तो राल्फ ने घोषणा की कि वह नीचे चबूतरे पर मीटिंग करने वाला है और वह अकेला पर्वत से नीचे उतर गया। अध्याय 5, समुद्र से आया जंतु। मीटिंग के बारे में घोषणा करके राल्फ पर्वत से नीचे उतर आया था। वह तट पर चहलकदमी करते हुए अपने भाषण के मुद्दों पर विचार कर रहा था। वह चाहता था कि मीटिंग गंभीरता के साथ हो, कोरा तमाशा न हो। यकायक उसने महसूस किया कि सूरज पश्चिमी क्षितिज की ओर ढल रहा है और वह स्नान कुंड की तरफ लपका। चबूतरे पर लड़के इकट्ठे थे और मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने चुपचाप उसको आने के लिए जगह दी। आग के बारे में हुई गलती और उसके कठोर मूड का उन्हें ध्यान था। राल्फ नेता की सीट पर आकर बैठ गया। इतनी देर गए मीटिंग कभी नहीं हुई थी। वह नहीं चाहता था कि जिस तरह उनकी मीटिंगें आमतौर पर गड़बड़ी में भंग हो जाती थीं, यह मीटिंग उसी तरह भंग हो जाए। नेता को बुद्धिमान तथा विचारवान होना चाहिए, लेकिन उसने अनुभव किया कि वह पिग्गी के समान नहीं सो सकता था। यह तथ्य उसकी समझ में आ गया था कि उसने अपने हास्यास्पद शरीर के बावजूद पिग्गी के पास दिमाग था। राल्फ विचार विशेषज्ञ बन गया था और दूसरों के बीच विचार पहचान सकता था। अस्त होते सूर्य ने उसे बीतते हुए समय की फिर याद दिलाई और उसने शंख उठाया। जब मीटिंग शुरू हुई तो वातावरण शांत एवं गंभीर हो गया। राल्फ ने कहा कि मैंने यह मीटिंग मामले सुलझाने के लिए बुलाई है, तमाशे अथवा मजाक के लिए नहीं। ताज़ा पानी स्टोर करके रखना, झोपड़ियाँ बनाना, शौच के लिए स्थान और सबसे महत्वपूर्ण विषय आग जलाए रखना जैसे असंख्य विषय हैं। इनमें से किसी पर भी लड़कों ने ध्यान नहीं दिया। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करने के बजाय उन्होंने खेलकूद और मौज मस्ती में ही वक्त बर्बाद किया है। रॉल्फ के भाषण के बीच बीच में व्यवधान पड़े और हर बार उसे लड़कों को शांत करने के लिए शंख दिखाना पड़ा। उसने कहा कि अगर वे आग जलती नहीं रखेंगे तो उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकेगी। सुअर की अपेक्षा आग और धुआं अधिक महत्व के हैं। उसने कहा, हमें शिखर पर धुआं करना है या मर जाना है। अपनी श्रेष्ठता जतलाते हुए उसने कहा कि पर्वत पर केवल एक ही अग्नि रहेगी। अगर किसी को कुछ पकाना है तो ऊपर जाकर शिखर पर पकाए। खाना पकाने के लिए अब हर कहीं छोटी छोटी आग नहीं जलाई जाए। इस पर चारों तरफ से शोर उठा, लेकिन रॉल्फ ने उन्हें याद दिलाया, तुमने वोट देकर मुझे नेता चुना है, अब तुम जो मैं कहूँ वह करो। अंत में उसने उस डर का जिक्र किया जो उनमें पैदा हो गया था। जिस जंतु का अस्तित्व ही नहीं है उससे डरना बेतुकी बात है। तब रॉल्फ ने शंख नीचे रख दिया, जिससे यह संकेत मिला कि उसका भाषण समाप्त हो गया। अब जैक ने खड़े होकर शंख पकड़ा। उसने छोटे बच्चों को अज्ञात भय को मन में प्रश्रय देने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें रोते बच्चों का अनुपयोगी समूह कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि कोई जानवर उन्हें निगल जाए और उनके लिए यह ठीक होगा, किंतु द्वीप पर ऐसा कोई जानवर है ही नहीं। मैं सब जगह घूम आया हूं और अभी तक मुझे वह मिला नहीं है। इस जैसे छोटे से द्वीप पर बड़े जानवर हो नहीं सकते। पिग्गी ने भी कहा कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि द्वीप पर कोई जानवर नहीं हो सकता, लेकिन वह सुनना चाहता था कि छुटकों को क्या कहना है। फिल नामक एक आत्मविश्वासी छुटके ने कहा कि पिछली रात उसने कुछ रेंगने वाली चीजें देखी और जाग पड़ा। डर के मारे वह रॉल्फ को पुकारने लगा था, किंतु तभी अकस्मात उसने वृक्षों के बीच चलती हुई एक बड़ी और भयावनी वस्तु देखी। रॉल्फ ने यह समझाने की कोशिश की कि वह केवल उसका दुःस्वप्न था, किंतु फिल ने जोर देकर कहा कि वह पूरी तरह जागा हुआ था और वह स्वप्न नहीं था। रॉल्फ ने सबसे पूछा कि क्या कोई रात में बाहर गया था। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद साइमन उठ खड़ा हुआ। यह पिछली रात जंगल में अपने प्रिय स्थान पर गया हुआ था। इस प्रकार फिल द्वारा देखे गए जंतु का पता चला। एक और छोटा बालक था, परसिवल। वह रो रहा था और दूसरों भी उसकी सहानुभूति में उसके साथ साथ रोने लगे थे। उसने समुद्र से निकलकर आते हुए उस जानवर को देखा। मॉरिस ने भी कहा कि समुद्र में विलासकाय जंतु है। बालक पूर्णतः भयभीत थे। बात यह थी कि वे समुद्र के बहुत निकट थे। अब किसी ने कहा कि वह जंतु कोई प्रेत हो सकता था। इससे वे और भी भयभीत हो गए, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और अज्ञात का भय उनके मन में छुपा हुआ था। इसके बाद वे तर्क के मार्ग से भटक गए और अप्रिय विषय उठ गए। पिग्गी और जैक के मध्य क्रोध भरे शब्दों के आदान प्रदान के उपरांत कोलाहल के बीच मीटिंग भंग हो गई। जैक ने कहा कि वह उस जानवर का शिकार कर देगा। उसने शिकार गीत गाना शुरू कर दिया और लड़कों का समूह शिकार की नकल करते हुए चल दिया। केवल रॉल्फ, पिग्गी और साइमन चबूतरे पर रह गए थे। पिग्गी ने चाहा कि रॉल्फ शंख बजाकर सबको वापस बुलाए, किंतु रॉल्फ को हिचकिचाहट हुई। उसे भरोसा नहीं था कि वे लौट कर आएंगे। वह हताश होकर कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि नेता का पद त्याग दूं। लेकिन पिग्गी और साइमन ने कहा कि हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि तब जैक मेरी ड्यू नेता बनकर जाएगा और हम पर हुक्म चलाएगा। पिग्गी ने कहा कि यदि जैक नेता बन गया तो वह शिकार करने पर जोर देगा और पर्वत पर आग बिल्कुल नहीं जलेगी। पूरी तरह गड़बड़ और अव्यवस्थता फैल जाएगी। जैक पहले ही रॉल्फ से घृणा करता था, क्योंकि वह नेता चुना गया था और आग के मामले पर उसने उसको सबके सामने डांटा फटकारा था। साइमन पिग्गी से सहमत हुआ और उसने रॉल्फ से नेता बने रहने की प्रार्थना की। इसी बीच जैक नियमों को तोड़कर कुछ बड़े लड़कों को तट पर ले गया, जहां उसके नेतृत्व में वे जंगलियों की तरह गाने लगे। छोटे बच्चे शोर मचाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। तब रॉल्फ, पिग्गी और साइमन सोचने लगे कि ऐसी स्थिति में वयस्क व्यक्ति क्या करते, और तब उन्हें आभास हुआ कि यह कैसा दुर्भाग्य था जो उन्हें वयस्कों का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं था। अध्याय 6। आकाश से आया जंतु। कुछ समय पश्चात वे सब झोपड़ियों में जाकर सो गए। राल्फ, साइमन और पिग्गी भी एक झोपड़ी में जाकर लेट गए। परंतु वे बेचैन थे इसलिए उन्हें नींद नहीं आई। किसी छुटके की चीख अथवा बड़कों की कराहट से रात्रि की निस्तब्धता भंग होती थी। आखिरकार ये दोनों लड़के भी सो गए। जब वे सो रहे थे तब बाहरी दुनिया में वयस्कों के बीच चल रहा था युद्ध उस द्वीप के निकट आ पहुंचा जहां वे परित्यक्त बालक सो रहे थे। वहां से लगभग 10 मील ऊपर की तरफ हवा में लड़ाई हो रही थी। यद्यपि कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी किंतु तोपें दगने से प्रकाश की चमक हो रही थी। एकाएक एक चमकदार धमाका हुआ और आकाश में प्रकाश की लकीरें जाती हुई दिखाई दी। एक हवाई जहाज में आग लग गई थी और पैराशूट से लटकी हुई एक आकृति नीचे गिरने लगी। वह आकृति पर्वत पर गिरी और चट्टानों तथा झाड़ियों में उलझ गई। वह पैराशूट की डोरियों में इस प्रकार फंसी हुई थी कि जब हवा चलती थी तब वह अपना सिर उठाकर पर्वत के पार देखने लगती थी, किंतु जब हवा चलना बंद हो जाती थी तब वह आकृति अपना सिर घुटनों के बीच किए हुए आगे को झुक जाती थी। वह एक पायलट का शव था। जुड़वां सैम तथा एरिक पर्वत पर आग के पास ड्यूटी दे रहे थे। उषाकाल की ठंड और अर्ध अंधकार में वे बुझी हुई आग को फिर से जलाने की कोशिश कर रहे थे। हमेशा की तरह वे ड्यूटी पर सो गए थे और जागने पर उन्होंने देखा था कि अब आग लगभग ठंडी हो चुकी थी। उन्हें रॉल्फ का डर था। उन्होंने फुर्ती से अंगारों को फूंक मारी। महीन चीड़ का लकड़ी इकट्ठी करके उन्होंने कुछ ही क्षणों में आग को फिर से जला दिया। एरिक ने एकाएक चट्टान की ओर देखा तो उसे लगभग 15 गज की दूरी पर वह पैराशूट में फंसी आकृति दिखाई पड़ी। लड़कों ने उसे आकाश से आया जंतु समझा। भय से आक्रांत होकर वे प्राण लेकर नीचे झोपड़ियों की तरफ भागे। उन्होंने रॉल्फ को जगाया और बताया कि पर्वत पर क्या देखा था। बच्चे भयभीत हो उठे और रॉल्फ ने तुरंत बैठक बुलाई। वह शंख बजाना चाहता था लेकिन उसने उसे बच्चों को सिर्फ दिखा दिया और सभी ने संदेश समझ लिया। रॉल्फ ने एरिक को शंख दिया। जुड़वां बच्चों ने जो कुछ देखा और अनुभव किया था वह सुना दिया। उन्होंने अपने भयावह अनुभव का वर्णन किया और यह भी कहा कि उस जंतु ने उनका पीछा किया था। जैक ने सुझाव दिया कि उस जंतु का शिकार कर डालना चाहिए। वह उसी क्षण रवाना होने को तैयार था किंतु रॉल्फ ने कहा कि उनके पास कोई हथियार नहीं है और लकड़ी के भालों के बिना उसके निकट जाना मूर्खता होगी। पिग्गी की राय थी कि वे जहाँ हैं वहीं बनी रहें। शायद वह जानवर हमारे पास नहीं जाएगा। बहुत भय भरे विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि रॉल्फ और जैक अभियान का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने यह तय किया कि पहले खाना खा लें तब चलें। उन्होंने पिग्गी को चबूतरे पर टिकाकर छोड़ दिया। उसे पीछे ठहराकर छुटकों की रक्षा करनी थी। पिग्गी अकेला कुछ नहीं कर सकता था और उसे खुद भी जानवर का डर था। उसने सोचा कि जब बड़े लड़के चले जाएंगे तो जानवर उन पर आक्रमण कर सकता है। उसके चश्मे का एक लेंस टूट चुका था जिस कारण वह उसे एक आंख से देख नहीं सकता था। जैक गुस्सा हो उठा और शंख के नियम उल्लंघन करते हुए पिग्गी पर चिल्ला पड़ा। रॉल्फ उसका भाषण और सहन नहीं कर सका और उसने जैक को बैठ जाने को कहा। रॉल्फ ने विवाद का विषय बदलकर उनका ध्यान उनके उद्धार के विषय पर लगा दिया। उसने कहा, क्या तुम सब अपना उद्धार नहीं चाहते? लड़कों को सद्बुद्धि आई। सभी ने झटपट रॉल्फ का समर्थन किया और संकट टल गया। रॉल्फ को आग की भी चिंता थी जिसकी उपेक्षा होगी। रॉल्फ ने जैक से पूछा कि वह द्वीप के किस भाग में नहीं गया था। जैक ने बताया कि अंतिम छोर को छोड़कर जहां पर चट्टानों को ढेर लगा था वह शेष सभी स्थानों पर हो गया था। उन्होंने अपनी उसी कोने में खोज करने का निर्णय लिया। जानवर की मांद होने की संभावना उसी स्थान पर सर्वाधिक थी। जैक लड़कों के आगे चला और रॉल्फ पीछे पीछे। साइमन यह विश्वास करने को तैयार नहीं था कि पंजों वाला कोई जानवर पर्वत के शिखर पर बैठता है जो अपने पीछे जमीन पर कोई भी निशान नहीं छोड़ता और जिसने सैम या एरिक को पकड़ा नहीं। उनकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। वे शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि वह एक किले जैसी चट्टान है। चट्टान की एक संकड़ी कगर शिखर तक गई थी। किला गुलाबी ग्रेनाइट पत्थर का था और संभवतः 100 फुट ऊंचा था। लड़कों को लंबी घास में प्रतीक्षा करने को छोड़कर रॉल्फ उस ऊंचे संकड़े रास्ते पर चल पड़ा। उसका चेहरा पीला और होंठ भींचे हुए थे। सावधानी पूर्वक और कांपते हुए वह गुलाबी बुर्ज पर पहुंच गया और ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ही समय पश्चात उसने शिखर पर पहुंचकर सुनसान शिलाखंडों को देखा। उत्तेजित जय कुछ ही क्षणों के बाद उसके पास आ पहुंचा और बोला, तुम्हें अकेले यह काम नहीं करने दे सकता। किले के लिए क्या बढ़िया जगह है। जिन्होंने उसे शेष ऊंचाई साथ साथ पार की और वहां से 100 फुट नीचे घास पर एकत्र लड़कों को देखा। तब उन्होंने उनके पास लौट आए जिनका डर गायब हो चुका था और जो वहीं ठहर कर खेलते रहने को उत्सुक थे, लेकिन रॉल्फ पर आग फिर से जलाने का ख्याल हावी था और वह इसके लिए दृढ़ था कि वे पर्वत पर जाएं जहां वह जानवर आखिरी बार देखा गया था। उसने कहा, हमें निश्चय करना होगा, क्या तुम पर्वत को देख नहीं सकते? यहाँ कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है, कोई जहाज समुद्र में हो सकता है। विद्रोह से भरकर लड़के चुप हो गए। जैक उन्हें अपने नेतृत्व में वापस ले गया। अध्याय 7, छायाएं तथा ऊंचे वृक्ष। किले से लौटते हुए रॉल्फ और अन्य लड़के जैक के पीछे पीछे चले। रॉल्फ प्रयत्न कर रहा था कि जानवर को ख्याल से निकाल दे और कुछ समय के लिए स्वप्न देखे। वह उष्ण अपराहन था जब वे फलों से भरपूर एक जगह पहुंचे तो पूरी पार्टी ने रुककर फल खाए। बैठने पर रॉल्फ को पहले गर्मी का ख्याल आया। उसने चाहा कि वह बाल कटवा सकता, उसके पास टूथ ब्रश होता और साबुन से नहा सकता। अपने नाखून देखकर उसे ध्यान आया कि पता नहीं कब उसने नाखून चबाने की अपनी आदत फिर शुरू कर दी। शिकारी और अन्य लड़के उपलब्ध फलों को पेट में ठूंसने में व्यस्त थे। रॉल्फ ने उनकी ओर देखा तो पाया कि वे भी गंदे हो रहे थे और कई दिन से नहाए नहीं थे। उसे आभास हुआ कि अब उसे ऐसी दशाओं की चिंता नहीं होती। द्वीप की दूसरी ओर के समुद्र को देखते हुए रॉल्फ सम्मोहित हो गया। लहरों के ऊपर लहरें लय सहित उठ और गिर रही थीं। अकस्मात ही साइमन आकर रॉल्फ के कानों में फुसफुसाकर कहने लगा कि वे जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाएंगे। रॉल्फ उलझन में पड़कर साइमन का मुंह देखने लगा, लेकिन साइमन ने अपनी पूर्वानुमान दोहराया कि वे वास्तव में लौट जाएंगे। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कराए और कुछ बोले नहीं। उसी बीच रोजर ने कुछ ताजी भाप निकलती हुई विष्ठा देखी और जैक ने शिकार पर जाने का निर्णय किया। कुछ त्रुटि के कारण वह कुछ देर को रुक गया और रॉल्फ फिर अपने विचारों में खो गया। उसे अपने बचपन के दिन याद आए। एक बार वह अपने पिता के साथ बंजर भूमि के छोर पर एक कुटिया में रहा था। उसे हिमपात का स्मरण हुआ और कॉर्नफ्लेक्स से भरे कटोरे का भी, जो उसकी माता ने उसे सोते समय दिया था। उसे उन पुस्तकों का स्मरण हुआ जो बिस्तर के पास शेल्फ पर रखी थीं। लड़कियों, जादू और खुदाई के बारे में चमकीली पुस्तकें थीं। उनमें दी बॉयज बुक ऑफ ट्रेंस, दी बॉयज बुक ऑफ शिप्स भी थी। उसी समय रॉल्फ ने देखा कि सामने की झाड़ियाँ टूटकर धाराशाही हो रही हैं। जैक गिर गया और स्वरों के रास्ते से होकर एक चमकीले दांतों वाला जानवर भयावनी घुघराहट करता हुआ दौड़ा चला आ रहा है। रॉल्फ ने अपने लकड़ी के भाले से निशाना साधा और उसके थूथन पर फेंक मारा। जंगली सुअर की घुरघुराहट चीख में बदल गई और वह झाड़ियों में भाग गया। रॉल्फ ने जोश में भरकर सबसे कहा कि उसने सुअर पर भाला मारा जो उसकी थूथन में ही फंस रहा गया। रॉबर्ट ने सुअर की नकल करने की कोशिश की और रॉल्फ ने शिकार की। कुछ ही मिनटों में लड़के खेल खेलने लगे। कुछ समय पश्चात वे थक कर चूर हो गए और विश्राम करने बैठ गए। रॉल्फ ने समझ लिया कि इस गति से तो वे कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे। मॉरिस ने कहा कि उन्हें पिगी के साथ लौट चलना चाहिए, जिसे वे छोटे लड़कों की देखरेख के लिए छोड़ आए थे। लेकिन रॉल्फ और जैक ने जानवर के डर के बावजूद पर्वत पर चढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। सूर्य अस्ताचल की ओर ढल रहा था। छोटी छोटी ढलवां चट्टानों पर कभी कभी उन्हें हाथ पैर चलना पड़ता। बलुई तट के किनारे चट्टानों पर होकर चलने और लहरों से भीगने के बजाय लड़कों ने जंगल में होकर चलना सोचा। उन्होंने इसकी कोशिश की, किंतु जंगल बहुत घना था। चट्टानों पर होकर जाना असंभव लगा तो लड़के कुछ देर को बैठ गए। रॉल्फ ने कहा कि उनकी गति अत्यंत मंद थी। पर्वत शिखर तक की दूरी का अनुमान लगाने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ा। तब उन्होंने अपनी रफ्तार तेज की, लेकिन रॉबर्ट का घुटना बुरी तरह कट गया और सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें रफ्तार धीमी करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद रॉल्फ ने कहा, हम छोटे बालकों को पिगी के साथ अकेले नहीं छोड़ सकते। जैक ने कहा कि पिगी को कुछ होना नहीं चाहिए। साइमन तुरंत खुद ही अकेले जंगल में होकर पिगी के पास जाने को तैयार हो गया। इससे पहले कि रॉल्फ कुछ तय करता, साइमन चल दिया। लड़कों ने चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन रॉल्फ और जैक के बीच फिर झगड़ा हुआ। आखिरकार रॉल्फ ने जैक से पूछा, तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? जैक चुप रहा। कुछ देर बाद जैक ने चुप्पी तोड़ी और लड़कों को उसके पीछे पीछे ऊपर चलने को कहा। लड़कों ने कुछ ऊपर चढ़ने के बाद वहीं रात बिताने का फैसला किया, लेकिन जैक की राय भिन्न थी। रॉल्फ ने लड़कों से पूछा, लेकिन वे सब थके हुए थे और ऊपर जाना नहीं चाहते थे। जैक ने रॉल्फ से व्यंग सहित प्रश्न किया, आ रहे हो? रॉल्फ एक शब्द बोले बिना उसके साथ चल दिया। रोजर भी उनके साथ हो लिया और तीनों एक बार फिर पहाड़ पर चढ़ने लगे। रॉल्फ को उनकी मूर्खता का ज्ञान हुआ। उसने सोचा कि यदि जानवर शिखर पर ही है तो उनकी लाठियां और लकड़ी के भाले अपर्याप्त होंगे। उसने दोनों को अपना विचार बताया, लेकिन जैक ने फिर रॉल्फ के साहस को चुनौती दी और अकेला चट्टानों की ओर गया। रोजर और रॉल्फ एक वृक्ष के तने पर बैठे हुए थे, तभी जैक कांपता हुआ आया। उसकी आवाज़ फटी फटी थी। उसने उन्हें बताया कि उसने पहाड़ पर एक फूली हुई बस्ती देखी है। रॉल्फ जांच करने को जाने लगा, किंतु जैक हिचकिचाया। जब रॉल्फ आगे बढ़ रहा था तो उसकी अंतरात्मा में तड़क की आवाज़ उठी। जब वे आखिरी ढलान पर पहुंचे तो वे झुकते हुए साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। रॉल्फ कांपने लगा। उसने उन्हें चले आने को कहा। रोजर थोड़ा पीछे रह गया था। जैक ने और आगे बढ़ने को कहा। उनको सामने एक बड़े बंदर जैसा कुछ दिखाई दिया जो घुटनों के बीच सिर रखे बैठा हुआ सो रहा था। तभी जोरों से हवा चली और उस जानवर ने अपना सिर उठाया। वे तीनों जान बचाकर भागे। उनके साथ ही वे सोते हुए प्राणी चिल्ला उठे जो उनकी हलचल से जाग पड़े थे। पर्वत पर लड़कों की छोड़ी हुई तीन लकड़ियां और उस पर झुकती हुई चीज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहा। अध्याय 8, अंधकार के लिए उपहार। लड़के शीघ्र ही अपनी झोपड़ियों में पहुंच गए। पिगी बहुत दुखी था। रॉल्फ द्वारा बार बार सुनाए जाने पर भी वह अपनी कहानी पर विश्वास नहीं कर सका। लड़कों को मालूम नहीं था कि क्या किया जाए। वे उतनी बड़ी चीज से कभी नहीं लड़ सकते थे। रॉल्फ ने कहा कि जब तक दिन है तब तक अच्छा है, वरना वह जानवर कुछ भी कर सकता है। लड़कों को संदेह था कि वे आग जला सकेंगे, क्योंकि वह जानवर निकट ही था। जैक बोला, मेरे शिकारियों के बारे में क्या ख्याल है? तुरंत ही रॉल्फ ने उत्तर दिया कि वे तो सिर्फ लड़के हैं, उन जिनके पास लाठियां ही है। जैक का मुंह लाल हो गया। उसने वहां से जाकर शंख बजा दिया। जब तक झोपड़ियों में हलचल नहीं मच गई और शिकारी चबूतरे पर नहीं पहुंच गए, तब तक जैक शंख बजाता रहा। रॉल्फ ने जैक के हाथ से शंख ले लिया और बोला, यह मीटिंग। जैक ने उसे टूटकर कहा कि मीटिंग मैंने बुलाई है। रॉल्फ ने शंख जैक के हाथों में थमा दिया और पेड़ के तने पर बैठ गया। जैक ने लड़कों से कहा कि वह जानवर शिकारी था और वे उसे नहीं मार सके। वह रॉल्फ से क्रुद्ध था जो यह सोचता था कि शिकारी कायर थे। जैक ने रॉल्फ को फटकारना शुरू कर दिया। तब उसने लड़कों से पूछा कि नेता के बारे में उनकी क्या राय है। उसने कहा कि जो लड़के रॉल्फ को अपना नेता पसंद नहीं करते वे हाथ उठाएं। लड़के चुप रहे। किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया और जैक की आंखों से अपमान को आंसू बह उठे। उसने कहा कि वह रॉल्फ का साथ नहीं देगा और जो कोई उसके साथ शिकार करना चाहे वह उसके पास जंगल में आ सकता है। यह कहकर जैक चबूतरे से कूदकर जंगल में चला गया। रॉल्फ ने कहा कि वह सूरज ढल जाएगा तो वह लौट आएगा। लड़के फिर उस जानवर के बारे में सोचने लगे। साइमन ने पिग्गी से शंख लेकर कहा कि उसका विचार है कि लड़कों को पर्वत पर चढ़ना चाहिए। इस ख्याल से सभी कांप उठे। पिग्गी बोला कि पर्वत पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। उसने कहा कि द्वीप पर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धुआं है और उसके लिए आग की आवश्यकता है। यदि वे पर्वत शिखर पर आग नहीं जला सकते, फिर भी चट्टानों पर आग जलाकर धुआं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वहीं आग जलाई जाए। उन्होंने तेजी से लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दिया। ये लकड़ियां इतनी सूखी नहीं थी जितनी पर्वत पर थी, ये गीली और सड़ी हुई थी। उन्होंने चबूतरे के निकट रेत पर पत्तियों और टहनियों का पिरामिड बनाया। पहली बार पिग्गी ने घुटनों के बल बैठकर अपने लेंस को का प्रयोग आग जलाने के लिए किया। आग कुछ ही देर बाद बुझ गई। लड़कों के सामने वही समस्या फिर आई, आग को जलाए रखने के लिए वहां कुछ लड़कों को रहना भी जरूरी था। इसके लिए उन्होंने छोटे बालकों पर निर्भर रहना था। सैम, एरिक, बिल, रोजर और मॉरिस आसपास दिखाई नहीं दिए। पिग्गी ने कहा कि जब वह लकड़ी इकट्ठी कर रहा था तब उन्हें आते देखा था। जब रॉल्फ सोचने में व्यस्त था, पिग्गी जुड़वाओं को लेकर जंगल में चला गया और फलों को ढेर लेकर लौटा। रॉल्फ ने कुछ फल खाए किंतु उसे साइमन की चिंता लगी रही। साइमन जंगल में अपने प्रिय गुप्त स्थान पर चला गया था और यद्यपि उसे बड़ी जोर से प्यास लगी थी फिर भी वह वहां बैठा रहा। बहुत दूर बलुई तट पर जैक कुछ लड़कों के सामने खड़ा था। वे शिकारियों जैसे कपड़े पहने थे। उसने उनसे कहा कि जानवर के बारे में परेशान ना हो, वह नेता बनेगा और एक सुअर को मारकर दावत देगा। लड़के तब शिकार करने चल पड़े। उन्होंने एक सुअरणी अपने बच्चों के साथ मिली। उन्होंने अपने भालों से सुअरणी का शिकार किया। वातावरण में पसीना और शोर तथा रक्त और आतंक छा गया। जैक ने चट्टान पर अपने हाथों का खून पोंछा और सुअरणी के उधर से आंते निकालकर चट्टान पर ढेर लगा दिया। लड़के देखते रहे। तब आग की समस्या उठी। जैक ने योजना बनाई कि धवा बोलकर रॉल्फ के गुट की आग ले आएगी आई जाए। जैक ने एक लकड़ी का को पैना किया और सुअरणी की लाश में भोंक दिया। उसने मॉरिस और रॉबर्ट से लाश उठाने को कहा। इस बीच साइमन जहां था वहीं रुका रहा। वह सोचने के मूड में था। उसने देखा कि सुअरणी का सिर दिन के उस विचित्र प्रकाश में उसकी तरफ विनोदपूर्वक दांत दिखाकर मुस्करा रहा है। उसके चारों तरफ मक्खियां थीं। उसे ऐसा आभास हुआ कि वह सिर उससे भागकर लड़कों के साथ जाने को कह रहा है। चारों ओर निस्तब्धता थी। आंतों को ढेर मक्खियां का काला गुच्छा बन गया था। कुछ देर बाद ये मक्खियां साइमन पर आ गईं। वे उसके नथनों के बीच भिनभिनाने लगीं और उसकी जांघों पर उछल कूद करने लगीं। साइमन के सामने मक्खियों का बादशाह लकड़ी पर टंगा हुआ मुस्करा रहा था। साइमन की दाहिनी कनपट्टी में नाड़ी धड़कने लगी। राल्फ और पिग्गी आग को टकटकी लगाकर देख रहे थे और उस पर हरी पत्तियां डाल डालकर धुआं उठा रहे थे। जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे तभी अकस्मात उनके निकट में के जंगल में हल्ला हो हल्ला मच उठा। जैक के गिरोह ने आग पर धावा बोला और उसे उठा ले गए। जैक ने लड़कों को दावत का निमंत्रण दिया। रॉल्फ के साथ वह गए लड़कों ने महसूस किया कि आग के बिना उनका उद्धार संभव नहीं है, इसलिए आग जलती रहनी चाहिए। द्वीप के दूसरे भाग में साइमन लकड़ी पर टंगे हुए मक्खियों के बादशाह से बातें कर रहा था। सुअरनी साइमन से बातें करती जान पड़ी। उसने साइमन से लड़कों के पास लौट जाने को कहा लेकिन वह वहां से जा नहीं सका। उसका सिर चक्कर खा रहा था और उसकी आंखें अधमुंदी थी। साइमन ने मक्खियों से भरे सिर को गुब्बारे की तरफ फैलते हुए देखा। उसने अपने आप को एक विशाल मुख में झोंकते देखा। उसके भीतर कालापन था। तब वह उस मुंह के अंदर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अध्याय 9, मृत्यु का एक दृश्य। द्वीप के ऊपर बादलों का इकट्ठा होना जारी रहा। मक्खियों के अतिरिक्त और कोई वस्तु फली फूली नहीं। वे बादशाह को कालाप कर रही थीं। साइमन अकेला पड़ा था। उसकी नाक से खून बह रहा था। उसके खून पर मक्खियों तक आकर्षित नहीं हुई। उन्होंने भी उसे छोड़ दिया था। साइमन के खून और पसीने के बजाय उन्हें सुअरनी का सिर ज्यादा पसंद था। खून के बहने से भी साइमन की नींद नहीं टूटी। वह हर रात से बेखबर होकर सो रहा था। आखिरकार संध्या काल ढलने पर वह जागा। वह लताओं के सहारे उठकर खड़ा हुआ। उसके मुंह और ठुड्डी पर लगा हुआ खून सूख गया था। जब लताएं हिली तो मक्खियां सुअरनी की आंतों से उड़कर जोर से भिनभिनाने लगीं। मक्खियों का बादशाह लकड़ी पर काली गेंद के समान लटका हुआ था। साइमन लताओं के बीच रेंगता हुआ निकल आया। साइमन चलते चलते कुछ बड़बड़ा रहा था। जिधर उसे रास्ते मिला उधर ही वह चलता गया। थका होने के कारण वह लड़खड़ाया हुआ चल रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। तेज हवा का झोंका आया और उससे धूल के बादल उठ गए। भूरे बादलों के सामने साइमन को एक नीली चमक दिखाई दी। वह आगे बढ़ा, तब उसने एक कुबड़ वाली आकृति शिखर पर बैठी देखी जो उसकी तरफ देख रही थी। मक्खियां भी उस आकृति पर जा पहुंची। जब वह आकृति हिली तो मक्खियां उससे उड़ गई। जब वह स्थिर हो गई तो मक्खियां फिर उस पर आ बैठी। साइमन धीरे धीरे आगे को खिसका। शीघ्र ही उसने समझ लिया कि वह आकृति पैराशूट था। हवा के चलने पर वह हिलता था। साइमन उससे परे चला गया। उसने नीची हुई बलुई तटों को देखा। चबूतरे पर आग नहीं था, किंतु छोटी नदी के पार और एक बड़ी चट्टान के पास धुआं उठ रहा था। साइमन ने देखा कि अधिकांश लड़के वहां थे। उसने अपने निकट के असहाय जानवर को देखा। उसने चाहा कि शीघ्र लड़कों को इस हानिकारक प्राणी के बारे में बता दें। रॉल्फ कुंड में नहा रहा था। पिग्गी अपने चश्मे से आकाश की ओर देख रहा था। उसे उमड़ते हुए बादल अच्छे नहीं लगे। दो छोटे बालक कुंड के किनारे खेल रहे थे। रॉल्फ कुंड से बाहर आया। उसने पिग्गी के ऊपर पानी उछाला। पिग्गी ने कहा कि उसके चश्मे का ध्यान रखे, लेकिन रॉल्फ ने फिर पानी उछाला। वह पिग्गी पर हंसा। पिग्गी ने पानी को रॉल्फ के मुंह पर दे मारा। रॉल्फ ने पिग्गी से पूछा कि दूसरे लड़के कहाँ हैं। पिग्गी ने उत्तर दिया कि संभवतः वे झोपड़ियों में हैं। उसने यह कहा कि सैम और बिल चबूतरे से आगे चले गए हैं, वे जैक की पार्टी में शामिल होने लगे गए हैं। पिग्गी ने सुझाव दिया कि उन्हें भी वहां जाना चाहिए। जमीन और तट के बीच एक घास वाला चौड़ा मैदान था। रॉल्फ, साइमन और पिग्गी के अतिरिक्त सब लड़के उस मैदान पर खड़े थे। वे हंस रहे थे, गा रहे थे, घास पर बैठे थे या खड़े हुए थे। उनके हाथों में मांस का भोजन था जिसे वे लगभग समाप्त कर चुके थे। उनमें से कुछ नारियल के खोल से पानी पी रहे थे। बीचों बीच में लकड़ी का इकट्ठा एक लट्ठा पड़ा हुआ था। उस पर जैक बैठा हुआ था। वह रंगा हुआ था और मालाएं पहने था। वह एक मूर्ति के समान दिखाई दे रहा था। उसके पास मांस, फल और पेय से भरे नारियल के खोल के ढेर पड़े हुए थे। रॉल्फ और पिग्गी भी उस घास वाले मैदान पर जा पहुंचे जहां जैक की पार्टी दावत उड़ा रही थी। जैक ने अपना भाला हिलाया और अपने अनुयायियों से कहा कि उनके लिए थोड़ा मांस लाएं। लड़कों ने उन्हें मांस के बड़े बड़े टुकड़े दिए। उन्होंने उन्हें उपहार मानकर खाया। तब जैक ने पूछा कि क्या सबने जी भरकर मांस खा लिया है। जैक स्वामी की भावना पर गर्व अनुभव कर रहा था। रॉल्फ खाते समय आग को देख रहा था। शाम हो चुकी थी, किंतु वह समय भय एवं हिंसा से पूर्ण था। वहां तनिक भी शांति नहीं थी। तभी जैक ने पेय मांगा। हेनरी ने एक खोल लाकर उसे दिया और उसने उसे पिया। जैक ने सबको बैठ जाने का आदेश दिया। लड़के जैक के सामने घास पर बैठ गए, लेकिन रॉल्फ और पिग्गी एक फुट नीचे खड़े रहे। उस क्षण जैक ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जैक ने लड़कों से पूछा कि कौन कौन उसके दल में शामिल होकर खूब भोजन और मौज मस्ती उड़ाना चाहते हैं। रॉल्फ ने कहा कि नेता तो मैं ही हूँ, किंतु अब तक लड़के जैक से काफी प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने रॉल्फ की बात अनसुनी कर दी और जैक के दल में शामिल हो गए। केवल पिग्गी रॉल्फ के साथ रह गया। पिग्गी ने बुद्धिमानी से काम लिया और रॉल्फ की कलाई पकड़कर उसे दूर ले गया। उसने रॉल्फ से कहा कि अगर वहां अधिक ठहरे तो संकट उत्पन्न हो सकता है। मौसम खराब हो गया। बादल गरजने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी, वर्षा होने वाली थी। छोटे बालक डर गए, वे चिल्लाते हुए भागे। शिकारी बेचैनी से आकाश की ओर देखने लगे, किंतु जैक ने उन्हें नृत्य करने की आज्ञा दी। उन्मत्त होकर नाचते गाते लड़कों का साइमन और उसकी चिल्लाहट पर ध्यान नहीं गया। वे बहुत मस्त हो रहे थे। जानवर को मार दो, उसका गला काट दो, उसका खून बहा दो, गाते हुए साइमन को डंडों से पीटने लगे। उसमें कोई हलचल नहीं हुई और कोई शब्द नहीं निकला। अकस्मात बड़े जोर से वर्षा हुई। लड़के भागकर अपनी झोपड़ियों में चले गए। केवल वह प्राणी निश्चेष्ट पड़ा रहा। उसके रक्त से रेत रंग गई। वे साइमन को मारकर छोड़ गए थे। आधी रात को वर्षा रुक गई और बादल हट गए। पैराशूट में फंसा हुआ प्राणी मुक्त हो गया और पैराशूट ने उसे उड़ाकर चट्टान पर और फिर समुद्र में पटक दिया। बलुई तट पर ज्वार के साथ साइमन का शव खुले समुद्र की ओर बह गया। अध्याय 10, शंख और चश्मा। पिगी को कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि वह चश्मे के बिना ज्यादा अच्छी तरह देख सकता है। उसने बचा हुआ एक लेंस दूसरी आंख पर लगा लिया। रॉल्फ उसकी तरफ आया और नेता की सीट तथा शंख के सामने घास पर बैठ गया। साइमन की मृत्यु से रॉल्फ और पिगी को गहरा धक्का लग गया। प्रारंभिक दल में से अब केवल ये चार बचे थे, रॉल्फ, पिगी, सैम और एरिक। अन्य सब जैक के साथ हो गए थे। वे द्वीप की दूसरी ओर रहने चले गए थे, जिसे कैसल रॉक, दुर्ग चट्टान कहते थे। वे सदा सुअरों का शिकार करने और सुअर आखेट का खेल खेलने में व्यस्त रहते थे। वे हिंसक हो उठे थे। इस परिवर्तन से रॉल्फ परेशान था। वह यह निर्णय नहीं कर सका कि क्या किया जाए। अंत में रॉल्फ ने पिग्गी से राय मांगी। पिग्गी ने कहा कि उसे मीटिंग बुलानी चाहिए। वह अभी भी नेता था। रॉल्फ उसके इस विचार पर हंसा। तब वह कांपने लगा। उसने कहा कि जैक तथा उसके दल ने साइमन की हत्या की है। पिग्गी बोला कि वह एक दुर्घटना थी, लेकिन रॉल्फ ने उत्तर दिया कि उसने यह दृश्य देखा नहीं था। वास्तव में वे दोनों इतने भयभीत थे कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। पूरे ग्रुप में से केवल वे चार ही बचे थे। पिग्गी ने कहा कि वे चार लड़के आग को जलती नहीं देख सकते थे। इसी बीच जुड़वां लड़के सैम और एरिक जंगल में से एक लट्ठा घसीटते हुए लाए। उन्होंने उसे आग के निकट पटक दिया और कुंड की तरफ चले गए। उन्होंने रॉल्फ को देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे वे वन को गए नहीं थे। उन्होंने कहा, हम जल्दी चले आए थे। रोजर द्वीप पर घूम फिर रहा था जब वे कैसल रॉक की मुख्य भूमि से जोड़ने वाली संकरी जगह पर आया तो उसे ललकारा गया। आवाज बड़ी तेज थी और ऊंचे स्थान से आई थी। पहरेदार रॉबर्ट ने रोजर को बताया कि जैक ने हर किसी को ललकारने की हिदायत दी है। रॉबर्ट ने यह भी बताया कि विल्फ्रेड कई घंटों से बंधा पड़ा है और उसकी पिटाई हो सकती है। रोजर तब चट्टानों के पीछे से गुफा की ओर उतरा। वहां उसे जैक मिला। जैक ने कहा कि वे अगले दिन शिकार करेंगे। उसने फाटकों पर तैनात पहरेदारों से कहा कि वे विशेष रूप से सतर्क रहे, क्योंकि जानवर या कोई अजनबी चुपके से आकर घुस सकता है। बिल ने पूछा कि आग जलाने के लिए वे किस चीज का प्रयोग करेंगे। जैक ने जवाब दिया कि वे दूसरों से आग ले आएंगे। मॉरिस और रोजर उस आक्रमण के लिए जैक के साथ जाने को खुद तैयार हो गए। इस बीच रॉल्फ और पिग्गी अग्नि को जीवित रखने में व्यस्त थे। धुएं तथा गर्मी के लिए भी आग जरूरी थी। धुआं जब हल्का होने लगा तो वे सब और लकड़ी इकट्ठी करने चले गए। एरिक ने कहा कि वह थक गया है और तब यह तय हुआ कि रात में जब धुआं दिखाई नहीं देता, आग को जलती रखने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ दिन में ही आग जलती रखी जानी चाहिए। जुड़वां लड़के झोपड़ी में एक तरफ और रॉल्फ और पिग्गी दूसरे छोर पर रात में सोने चले गए। रॉल्फ ने स्वप्न में देखा कि एक जेट विमान उन्हें वापस ले जा रहा है और वह और भी सुंदर वस्तुएं देख रहा था कि उसने एक भयानक कराहट सुनाई पड़ी जो झोपड़ी के दूर वाले छोर से आ रही थी। सैम और एरिक आलिंगन में बंधे हुए एक दूसरे से लड़ रहे थे। कुछ देर बाद फिर शांति छा गई। पिग्गी ने रॉल्फ से कहा कि अपने कानों पर जोर देकर आवाजें सुने। रॉल्फ इस ख्याल से डर गया कि वह जानवर था। एकाएक झोपड़ी में भयंकर गुर्राहट और जीवित प्राणियों के पैरों की आवाज सुनाई पड़ी। उसके बाद लड़ाई हुई और घूंसे चले। पिग्गी को दमे का दौरा पड़ गया और वह पत्तों के ढेर में जा गिरा। जैक और उसके शिकारियों ने उन पर वार किया था। सैम और एरिक ने भी पलटकर उन पर वार किया था। उन्होंने सोचा कि वे शंख लेने के लिए आए थे। पिग्गी ने कहा, मैं जानता हूं वे किसी और चीज के लिए आए थे। दूसरी ओर बलुई तट की तरफ जैक अपने शिकारियों के साथ छुपे छुपे जा रहा था। उसके बाएं हाथ में पिग्गी का टूटा चश्मा लटक रहा था। अध्याय 11, कैसिल रॉक। रॉल्फ के ग्रुप और जैक के गिरोह की लड़ाई के बाद ये चारों लड़के उस जगह पहुंचे जहां आग जल रही थी। रॉल्फ घुटनों के बल बैठकर राख पर फूंकने लगा। वह तब तक फूंकता रहा जब तक उसके कान बजने नहीं लगे, किंतु उसका प्रयास व्यर्थ हुआ। चश्मे के बगैर पिग्गी अंधे जैसा था। उसे चीज ढूंढने और ठीक ढंग से देखने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। चारों जैक मेरिड्यू पर क्रोधित थे। पिग्गी ने रॉल्फ से मीटिंग बुलाने को कहा। रॉल्फ ने शंख बजाया, उसकी आवाज से जंगल गूंज उठा। पक्षी पहले दिन की तरह शोर करते हुए पेड़ों के ऊपर से उड़ चले। कुछ छुटके झोपड़ियों से बाहर आ गए। रॉल्फ ने पिग्गी के हाथों में शंख थमा दिया। पिग्गी ने कहा कि चश्मे के बिना अब उसे दिखाई नहीं देता। द्वीप पर भयावह बातें हुई हैं। उसने यह भी कहा कि अकेला रॉल्फ ही ऐसा था जो कुछ कर सका था। तब उसने शंख रॉल्फ को दे दिया। रॉल्फ ने सारा दोष जैक के शिकारी गिरोह के मत्थे मढ़ा। उसने कहा कि उन्होंने जैक की पार्टी को खुशी से आग दे दी होती। पिग्गी बीच में बोल उठा, ये कोरी बातें हैं, इनसे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मुझे मेरा चश्मा चाहिए। रॉल्फ का विचार जाने को हुआ, किंतु पिग्गी ने कहा कि वे भाले लेकर चलेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा, उसे तो कुत्ते की तरह पकड़कर ले चलना पड़ेगा। उसने कहा कि वह जैक से उसका चश्मा लौटा देने को कहेगा। भोजन करके वे तट के सहारे चल पड़े। रॉल्फ आगे आगे चला, उसके पीछे जुड़वा और पिग्गी शंख को दोनों हाथों में थामे हुए बीच में चला। तूफान का कोई चिन्ह शेष नहीं था और बलुई तट धुलकर एकदम साफ हो गया था। वे उस जगह होकर गुजरे जहां गिरोह ने नृत्य किया था। वहां चट्टानों पर जली हुई लकड़ियां पड़ी थीं। उन्हें विश्वास था कि गिरोह कैसिल रॉक पर मिलेगा और जब उन्हें वह दिखाई पड़ने लगा तो वह सब एक साथ रुक गए। कुछ भी देखने में असमर्थ पिग्गी पूछता रहा, क्या यह खतरे से खाली होगा? पिग्गी के संदेह की उपेक्षा करते हुए रॉल्फ ने उससे शंख लेकर बजाना शुरू कर दिया। जंगली आ पहुंचे, वे भाले लिए हुए थे और इतने रंगे पुते थे कि पहचाने नहीं जा सकते थे। रॉल्फ ने उनसे कहा, मैं मीटिंग बुला रहा हूँ। उसने उनसे पूछा कि जैक कहाँ है। लड़कों ने कहा कि वह शिकार करने गया है। रॉल्फ के पीछे से किसी ने पुकारा, वह जैक था। रॉल्फ ने उसे कहा कि पिग्गी का चश्मा वापस कर दे। उसने आगे कहा कि तुमने उसके साथ घिनौनी चालाकी चली थी, आग को चुराने के बजाय अगर तुम उसे मांगते तो हम तुरंत दे देते। रॉल्फ ने सबके सामने जैक को बार बार चोर कहा। जैक इस अपमान को भी पी ना सका और दोनों में हाथापाई हो गई। रॉल्फ ने शिकारियों से आग जलती रहने और पिग्गी के चश्मे की जरूरत के बारे में कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर कान नहीं दिया। यकायक जैक ने लड़कों से कहा कि जुड़वा सैम और एरिक को बांध लो। रंगी पुती टोली ने जुड़वाओं को पकड़ लिया। तब जैक ने रॉल्फ से कहा कि अब तुम नेता नहीं और अब सब मेरा हुक्म मानते हैं। दोनों में फिर हाथापाई होने लगी। इस हो हल्ले के बीच पिग्गी वहां से अलग चल गया। उसके हाथों में शंख था। उसने कहा कि तुम सब छोकरों की टोली हो और अक्ल से काम नहीं कर रहे हो। रॉल्फ और जैक फिर एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने लगे और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। उनका इरादा हमला करने का था। ऊपर ऊंचाई पर रूजर अधर रखी चट्टानों के पास लीवर पर पूरा जोर लगाए खड़ा था। उसने लीवर के द्वारा चट्टानें लुढ़का दी। रॉल्फ ने चट्टानों के लुढ़कने की आवाज़ उन्हें देखने से पहले ही सुन ली। वह एक तरफ कूद गया, परंतु पिग्गी हट नहीं सका और चट्टान उसकी ठुड्डी से घुटने तक चोट करती हुई चली गई। शंख के हजार टुकड़े हो गए, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। पिग्गी 40 फुट नीचे समुद्र में चट्टान पर चित्त जा गिरा। उसकी खोपड़ी फट गई, उसके हाथ पैर इट गए। समुद्र की एक लहर आई और पिग्गी की लाश को बहाकर ले गई। एकदम खामोशी छा गई जब जैक ने रॉल्फ से चिल्लाकर कहा कि अगर तुम ठीक ढंग से नहीं रहोगे तो हमारा और तुम जैसा का भी ऐसा ही इलाज किया जाएगा। तब उसने रॉल्फ पर भाले से वार किया। टोली रॉल्फ की तरफ दौड़ी। उन्हें आक्रमण करते देख रॉल्फ कतराता हुआ भाग निकला और झाड़ियों में जा गिरा। इस प्रकार वह उझल हो गया। जैक अपनी टोली को वापस अपने स्थान पर ले गया और सैम और एरिक को अपनी टोली में शामिल हो जाने को फुसलाया। अध्याय 12, शिकारियों का हल्ला। रॉल्फ झाड़ी में पड़ा हुआ अपने जख्मों के बारे में हैरान हो रहा था। उसके सारे बदन पर खरोंचे थीं। उसने कानों पर जोर देकर आवाजें सुनने का प्रयास किया, क्योंकि वह कैसिल रॉक से दूर नहीं था। अपराहन ढल गया था, परंतु चट्टान के पीछे से कोई आवाज नहीं आई। उसने किनारे की डालियों को एक तरफ हटाकर उस ओर देखा। चट्टान के शिखर पर रॉबर्ट पहरे पर बैठा था। कोई रॉबर्ट के पास आया और उसे कुछ देकर वापस चट्टान के पीछे चला गया। रॉल्फ ने अनुमान लगाया कि दावत शुरू हो गई और पहरेदार को उसका भाग दिया जा रहा था। रॉल्फ को भी भूख लगी थी। उस समय स्वयं को सुरक्षित समझकर वह लंगड़ाता हुआ फल के वृक्षों की ओर गया। उसने सोचा कि शिकारी उसे अपने हाल पर छोड़ देंगे, परंतु पिग्गी और साइमन की मृत्यु के ख्याल से वह कांप उठा। तब उसने खूब फल खाए और बलुई तट की तरफ चला गया। अंत में वह एक खुली जगह पहुंच गया जहां चट्टानों के कारण वनस्पति नहीं उगती थी। वहां उसे एक डंडे पर टंगी सुवर्णी की खोपड़ी मिली जो उसकी तरफ दांत निपोर रही थी। खोपड़ी ने रॉल्फ की ओर ऐसे देखा जैसे रॉल्फ उसी सभी उत्तर जानता है और बताएगा नहीं। वह भय और क्रोध से भर उठा। उसने उस घिनौनी वस्तु पर भीषण प्रहार करके उसे टुकड़े टुकड़े कर डाले। रात होने पर रॉल्फ को अपना अकेलापन बहुत खला, यद्यपि वह थका हुआ था, फिर भी वह गिरोह के भय से सो नहीं सका। वह सुन सकता था उनके नारे, जानवर को मार दो, उसका गला काट दो, उसका खून बहा दो। रॉल्फ को मालूम था कि गिरोह दावत उड़ा रहा था। रॉल्फ ने सैम और एरिक को पहरे की ड्यूटी पर देखा। इस तथ्य को उसने एक घाव की तरह स्वीकार किया। तब उसने धीरे धीरे आगे बढ़ाकर और चट्टान के एक नुकीले सिरे को पकड़कर बहुत धीमे से उनके नाम पुकारे, इस डर से कि कहीं वे भागकर सबको चौंकाना न कर दे। उसने ऊपर उठकर कहा, यह तो मैं ही, रॉल्फ। एरिक चुप रहा, किंतु सैम ने अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रयत्न किया। उसने रॉल्फ से चले जाने को कहा। दोनों ने रॉल्फ से कहा कि अगले दिन वे उसकी खोज करेंगे। उन्होंने प्रयोग किए जाने वाले संकेत तथा रणनीति भी उसे बता दी। गिरोह ने उसे कोई उनकी तरफ आता हुआ देखकर उन्होंने रॉल्फ से चले जाने को कहा। सैम ने उसे मांस का एक टुकड़ा दिया। रॉल्फ ने कहा कि मैं निकट की झाड़ी में छुप जाऊंगा। तब वह झाड़ी के भीतर अंधेरे में जाकर लेट गया। कुछ ही समय में वह गहरी नींद में सो गया। उसके पास आते हुए शोर से उसकी नींद टूटी। वह खुले मुंह पर हाथ मारने से पैदा हुई आवाज थी जो आदिवासियों का संकेत होता है। रॉल्फ रेंगता हुआ झाड़ी में और भीतर चला गया और शिकारियों के चले जाने की प्रतीक्षा में सतर्कता सहित बैठ गया। जैक और रोजर एक जुड़वा के साथ झाड़ी तक आए, परंतु रॉल्फ को भरोसा था कि उस घनी झाड़ी के अंदर आना आसान नहीं होगा। कोई रेंग कर आएगा भी तो वह असहाय रहेगा। रॉल्फ ने तब एक आवाज सुनी, धकेलो धकेलो धकेलो। शिकारियों ने चट्टानों के ऊपर से झाड़ी की तरफ एक लाल चट्टान लुढ़का दी। चट्टान के द्वार वे झाड़ी की सघनता तोड़ने में सफल हो गए और तब उसकी तरफ आगे बढ़े। रॉल्फ ने एक दरार में से अपने डंडे द्वारा पूरी ताकत के साथ वार किया। शिकारियों ने तब रॉल्फ को बाहर निकालने के लिए आग जलाई। रॉल्फ झाड़ी में रेंगता हुआ उसको पार करके घने जंगल की ओर बढ़ा। उसके और जंगल के शेष भाग के बीच एक छोटा सा जंगली खड़ा था। रॉल्फ उस रंगे पुते लड़के में अपना भाला भोंक कर भाग गया। झाड़ी के पास उस पार से तेज आवाज आई। तब रॉल्फ आगे आगे भाग रहा था और शिकारी उसका पीछे पीछा कर रहे थे। रॉल्फ ने बचने का उपाय सोचने की बड़ी कोशिश की, किंतु सोच नहीं सका। अक्ल की बात बताने वाला पिग्गी था नहीं। वाद विवाद के लिए गंभीर मीटिंग नहीं थी और न शंख की महिमा। आग और अधिक फैलती जा रही थी और गिरोह के जंगली रॉल्फ का पीछा कर रहे थे। वे जंगलियों की तरह दौड़ रहे थे और पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। रॉल्फ थकता जा रहा था, लेकिन शोर उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। वह एक जड़ से ठोकर खाकर लुढ़कता हुआ गरम रेत पर जा गिरा। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ तो उसे एक बड़ी नुकीली टोपी दिखाई पड़ी। एक नौसेना अधिकारी रेत में खड़ा हुआ रॉल्फ की ओर सावधानीपूर्वक तथा आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। अधिकारी ने रॉल्फ से द्वीप पर हो रही घटनाओं के बारे में पूछा। उसने यह भी पूछा कि क्या उनके साथ द्वीप पर कोई वयस्क था। अग्नि बलुई तट के नारियल के वृक्षों तक पहुंचकर उन्हें निगल गई। अधिकारी ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए रॉल्फ से कहा, हमने तुम्हारा धुआं देखा। तुम लोग क्या कर रहे थे? क्या युद्ध हो रहा था अथवा और कुछ? रॉल्फ ने केवल सिर झुकाकर हामी भरी। तब उसने अधिकारी को अपने मृत मित्रों के बारे में बताया। अधिकारी ने पूछा, यहाँ नेता कौन है? रॉल्फ जोर से बोला, मैं ही हूँ। जैक आगे को बढ़ा, फिर अपना विचार बदलकर चुप खड़ा रहा। रॉल्फ निर्दोषिता के अंत, मानव हृदय की कलिमा और सच्चे तथा बुद्धिमान मित्र पिग्गी की मृत्यु के लिए सिसकियां भर कर रो पड़ा। अधिकारी से विचलित हो उठा, तब उन्हें मिलजुल कर तैयार होने को कुछ समय देने के लिए चला गया।